लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भवः की एक प्रसिद्ध कहावत को हम पाते हैं, अर्थात अतिथि भगवान की तरह है। अतिथि को ईश्वर का रूप समझें। यह हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों में अतिथि के सत्कार और सम्मान के संबंध में प्राचीन काल से चली आ रही समृद्धि और धनी प्रथा को व्यक्त करती है, जहां हम अनजान लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घरों में आदर पूर्वक एक स्थान देते हैं। हमारी मान्यताओं और विश्वास के अनुसार ईश्वर बिना बताए या किसी पूर्व सूचना के हमारे घरों में अनजान व्यक्ति स्वरूप आते हैं, और हम जिस रूप में एक अज्ञात बिना सूचना दिए व्यक्ति की देख रेख करते, अहो भगत और सम्मान में अपने को उपस्थित करते हैं, वह हमारे लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा का कारण बनता है। श्रोताओं, प्राचीन काल से चली आ रही यह प्रथा आज भी हमारे देश की बहुत सी संस्कृतियों और परिवारों में जारी है, जहां हम अपने माता पिता और पूर्वजों को, अनजान व्यक्ति को अपने घरों में स्वागत और सम्मान करते हुए पाते हैं, जो निश्चित रूप में विभिन्न रूपों में हमारे लिए ईश्वरीय वरदानों और कृपाओं का कारण बनता है। श्रोताओं, वर्ष के 16वें ही सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम आतिथ्य सत्कार की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस मनोभाव की परख करें कि हम अपने घरों में अपरिचितों का स्वागत किस रूप में करते हैं। क्या हम किसी अनजान व्यक्ति का अचानक अपने यहाँ आने से उचित सेवा सत्कार और सम्मान देते हैं? क्या हम उन्हें शक की निगाहों से देखते और भला बुरा कहते हुए उन्हें दुत्कार कर भगा तो नहीं देते?
यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरिया नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरिया ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचनों का श्रवण हमें प्रभु यीशु का स्वागत करने में उत्सुक और तत्पर रहने को मदद करे, जिससे हम उनकी आगवानी अपने यहाँ कर सकें, जो हमारे हृदय रूपी घरों में आने और हमारे संग निवास करने को सदैव लालायित रहते हैं। श्रोताओं, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के द्वारा तीन पुरुषों के आतिथ्य सत्कार किए जाने का वृतांत प्रस्तुत करता है। वे तीनों व्यक्तियों को अपने तंबू में आने की बात कहते हुए उनका स्वागत, उन्हें सम्मान दिखलाते और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। वे उनके लिए खाने पीने और सुस्ताने की व्यवस्था करते और उन्हें अपना आदर सम्मान प्रदान करते हैं। अब्राहम और सारा का उदारता में अपने को आतिथ्यों की सेवा में देना उनके लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा के द्वार खोलता है। उनका यह सेवा उनके लिए ईश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की परिपूर्णता को लेकर आती है, जहां हम सारा को मातृत्व प्राप्ति के आशीर्वाद से पोषित होता पाते हैं। श्रोताओं, पहले पाठ का संदर्भ हमारे लिए देने के भाव पर चिंतन करने का आह्वान करता है। जीवन हमारे लिए दिया गया है और हम अपने इस दिए गए जीवन को दूसरों के लिए उसी भांति देने को कहे जाते हैं जैसे कि यह हमें उदारता में दिया गया है। अतः हम अपने जीवन को, चाहे वे हमारे परिचित या अपरिचित ही क्यों ना हो, जिस भांति दूसरों के लिए देते उसी रूप में हम अपने लिए चीजों को पाते हैं। अपनी उदारता और खुले मन दिल से हमारा अपने को अन्यों के लिए देना हमारे लिए उदारता में उन चीजों को लाती है जिसकी कामना हम अपने जीवन में करते हैं। अपने देने के द्वारा हम अपने को पाने के योग्य बनाते हैं। श्रोताओं, हमारे देने में पाने का एक रहस्य है, जिसे कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए प्रकट करता है। संत पौलुस ईश्वर के विधान अनुसार कलीसिया के सेवक हैं। वे ईश्वर के संदेश को लोगों के बीच में घोषित करते हुए उस रहस्य को घोषित करते हैं जो संतों के लिए प्रकट किया गया है। संत पौलुस को ईश्वर ने अपने कार्यों के लिए चुना, जिसे पूरा करने हेतु उन्हें बहुत कष्ट और दुख सहने पड़े। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को विभिन्न कलीसियाओं के लिए घोषित किया जो सदैव हमारे बीच में निवास करते हैं। यहाँ संत पौलुस को हम उनकी उदारता में विभिन्न कलीसियाओं के लिए समर्पित करते हुए पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार के दुखों का सामना करना होता है। अपने को देना, दूसरों की सेवा करना सदैव किसी भी व्यक्ति के लिए दुखदायी होता है, क्योंकि इसमें हम त्याग और क्रूस के बोझ को पाते हैं जो हमें स्वयं की सोच, विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की मांग करता है। हमारे इस देने में सदैव दूसरों के हितों की प्रधानता रहती है, जिसे उदारता और त्याग में सिर्फ संतगण स्वभावी व्यक्ति पूरा करने के योग्य होते हैं, क्योंकि यह उनमें निस्वार्थ भावना से एक मार्ग का चुनाव करने को प्रेरित करता है जिसमें वास्तविक खुशी के रहस्य व्याप्त हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार, जहां हमने मार्था और मरियम को यीशु का आतिथ्य सत्कार करते हुए सुना, उदारता में मानव जीवन के दो चुनावों, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग को व्यक्त करता है। ये दोनों मार्ग हमारे लिए उचित और जरूरी हैं, जिनके माध्यम हम ईश्वर को अपना प्रेम और सेवा प्रकट करते हैं। ईश्वर की सेवा हेतु कर्म और भक्ति दोनों मार्ग हमारे लिए जरूरी और अच्छे हैं, लेकिन कर्म मार्ग कई बार हमें विभिन्न प्रकार की चिंताओं में डाल देती है, क्योंकि इसमें गतिशीलता और चंचलता है, जहां हम मार्था की तरह कई कार्यों को पूरा करने के उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। वहीं मरियम यीशु के चरणों के निकट बैठी, उनके वचनों को सुनती और अपनी भक्ति में उन्हें अपना प्रेम प्रकट करती है, जिसे यीशु उचित ठहराते हैं। श्रोताओं, हमें इस धरती पर कर्म और भक्ति दोनों मार्ग में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा ही हम उचित रूप में अपने को ईश्वर और अपने पड़ोसियों के लिए व्यक्त करते हैं आइए हम ईश्वर की माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें कर्म और भक्ति मार्ग में चलने की शिक्षा दें, जैसे कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में किया।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इराक के कूट में एक सुपरमार्केट में लगी आग में मारे गए और घायल हुए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति दर्शाते हुए संत पापा लियो ने एक शोक संदेश प्रेषित किया है। वैटिकन के राज सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संत पापा लियो के तार संदेश में कहा गया कि कूट में लगी आग की सूचना पाकर दुखी, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए, संत पापा लियो 14वें ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर की करुणा को समर्पित किया है और आपातकालीन कर्मियों के लिए प्रार्थना की है जो सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। संत पापा इस दुखद घड़ी में सभी पर शक्ति, सांत्वना और शांति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी इराकी शहर कूट में एक 5 मंजिला शॉपिंग सेंटर में लगी आग में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के इंडियाना स्थित वाइटिंग में मरियम को समर्पित गिरजाघर में पिट्सबर्ग के बीजेंटाइन कैथलिक महाधर्म प्रांत के सदस्यों को संत पापा लियो ने एक संदेश प्रेषित कर बीजेंटाइन कैथलिक गिरजाघरों की समृद्ध परंपराओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। आओ हम मसीह की आराधना करें और उनके आगे झुके शीर्षक के अंतर्गत जारी पिट्सबर्ग के बीजेंटाइन कैथलिक महाधर्म प्रांत के सदस्यों की बैठक को संत पापा लियो ने एकता में बढ़ने और प्रभु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्पुष्ट करने का एक बहुमूल्य अवसर निरूपित किया। उन्होंने कहा, अपने धार्मिक समारोहों, प्रार्थनापूर्ण चिंतन और भ्रातृत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से आप निश्चित रूप से मसीह के प्रति अपनी वफादार गवाही को नवीकृत करेंगे और बीजेंटाइन कैथलिक गिरजाघरों की समृद्ध परंपरा में सुसमाचार की अपनी घोषणा को गहरा करेंगे। संत पापा ने कहा कि पुरोहितों, धर्म संघियों और लोकधर्मी विश्वासियों के साथ साथ टोरंटो महाधर्म प्रांत और पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परिषद के प्रतिनिधियों की भागीदारी कलीसिया में एकता का स्पष्ट संकेत देती है। उन्होंने कहा, मैं आपके पूर्वजों की गवाही के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों और अनिश्चित ताओं के बीच उत्तरी अमेरिका में जीवंत बीजेंटाइन समुदायों का निर्माण किया, जिनकी विरासत आपके प्रेरित नवीनीकरण के साहसिक आलिंगन और आपकी निष्ठा में निहित है। अंत में संत पापा लियो ने लिखा, मैं आपको अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन देता हूं और आपकी सभा को ईश्वर की माता मरियम की मध्यस्थता के सिपुर्द करता हूं। गाजा में होली फैमिली कैथलिक गिरजाघर पर इजरायली हमले के मद्देनजर संत पापा लियो 14वें ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने आराधना स्थलों की रक्षा करने और तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया। पवित्र भूमि में चल रही उथल पुथल के बीच संत पापा लियो और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को फोन पर बात की। परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के अनुसार संत पापा ने इस अवसर पर तुरंत युद्ध विराम और वार्ताओं की शुरुआत का आह्वान किया। परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के वक्तव्य में शुक्रवार को बताया गया, आज सुबह कास्तल गुंदोल्फो स्थित प्रेरितिक आवास में संत पापा लियो 14वें ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। यह बात उन्होंने गुरुवार को इसराइली सेना द्वारा गाजा में होली फैमिली गिरजाघर पर किए गए सैन्य हमले के बाद कही, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह भी बताया गया कि बातचीत के दौरान संत पापा ने वार्ता, युद्ध विराम और युद्ध की समाप्ति के लिए नए सिरे से प्रयास करने की अपनी अपील को दोहराया। फ्रांस में कलीसिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्डिनल आंद्रे विंट ट्रॉय का 18 जुलाई को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 2007 से 2013 तक फ्रांस के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और 2005 से 2017 तक पेरिस के महाधर्माध्यक्ष रहे थे। शुक्रवार 18 जुलाई की शाम पेरिस के नोत्रदाम महागिरजाघर में दिवंगत कार्डिनल की आत्मा शांति के लिए एक सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई और ख्रीस्त्याग अर्पित किया गया। 7 नवंबर 1942 को पेरिस में जन्मे और 1969 में पुरोहित अभिषिक्त किए गए आंद्रे विंट ट्रॉय 1988 में अपने मूल धर्म प्रांत पेरिस के सहयोगी धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1999 तक वे कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष जां मैरी लुस्तिजेर के सहायक रहे थे और कार्डिनल की लगातार विदेश यात्राओं के दौरान धर्म प्रांत के प्रशासन की निरंतरता को सुनिश्चित करते रहे थे। 1999 में विंग ट्रॉय को पेरिस के महाधर्माध्यक्ष का दर्जा प्रदान कर दिया गया। पेरिस महाधर्म प्रांत के उनके 6 सालों के धर्माध्यक्ष कार्यकाल की सबसे खास बात 2001 में इले बुखार्ट की तीर्थ यात्राओं को आधिकारिक मान्यता मिलना था, जहां 1947 में पवित्र कुंवारी मरियम ने दर्शन दिए थे। पेरिस के महाधर्माध्यक्ष पद पर रहते कार्डिनल आंद्रे विंग ट्रॉय फ्रांस में मीडिया और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के लिए एक आवश्यक वार्ताकार की भूमिका निभाते रहे। 2007 से 2013 तक उन्होंने फ्रांस के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में भी कार्य किया। परिवार की रक्षा और विशेष रूप से समलैंगिक विवाह पर बहस के संदर्भ में उनका धर्माधीक्षीय कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार ने ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते हमलों को द्विपक्षीय चर्चा का विषय बनाने के आह्वान के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत की एक साप्ताहिक यात्रा पर गए महाधर्माध्यक्ष गालाघार ने 17 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। मंत्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे वैटिकन के अधिकारी से मिलकर खुश हुए। पोस्ट में कहा गया, यह आस्था के महत्व और संघर्षों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर एक अच्छी बातचीत रही। भारत और वैटिकन के विदेश सचिवों द्वारा चर्चित मुद्दों पर न तो वैटिकन ने और न ही भारत ने कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है। भारत के कलीसियाई अधिकारियों ने भी जयशंकर द्वारा अपने पोस्ट में उल्लिखित संघर्षों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि एक विश्वव्यापी ईसाई समूह द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में महाधर्माध्यक्ष गालाघर से भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में ईसाइयों के विरुद्ध बढ़ते हिंदू हमलों का मुद्दा उठाने के लिए कहा गया था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।